लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे दुर्व्यवहार के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कलीसिया के सदस्यों द्वारा दुराचार को सहन किया। हमारी अर्थ याचना है कि कलीसिया के भीतर ही वे अपनी पीड़ा का समाधान ढूंढ सकें तथा शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवारी कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी कार्यकर्ता श्री रोशन एक्का के साथ भी भेंट वार्ता के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया के अधिकांश आदिवासी अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। भारत में कृषि कार्य मानसून पर निर्भर करता है, जबकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ती वैश्विक आबादी के कारण यह बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। फलस्वरूप गरीबी, भुखमरी और पलायन की समस्याएं बढ़ रही हैं। इफाड अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एवं संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जिसका मुख्य कार्यालय रोम में स्थित है। इफाड ग्रामीण लोगों में निवेश कर उनकी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त करती है तथा उनके परिवारों के पोषण में सुधार और उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास करती है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इफाड की प्रशासनिक समिति के संयोजन में आदिवासी लोक मंच की छठी अंतर्राष्ट्रीय बैठक रोम में फरवरी के दूसरे सप्ताह में संपन्न हुई। सभा में विश्वभर के कुल 40 आदिवासी किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्हीं प्रतिनिधियों में से एक हैं झारखंड के देवगांव पल्ले से श्री रोशन एक्का। वे बतला रहे हैं कि कृषि कार्य क्यों महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इफाड किसानों की मदद क्यों कर रहा है और आज किसान किस तरह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं और जिसका हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है श्री रोशन एक्का के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
किसी ने कभी बहुत मजाक में कहा था, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि हम चाहे जितना डिजिटलाइज हो जाएं, गूगल से हम रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते। ये बहुत एक मुझे ये बहुत सच लगती है।
जरूर।
तो हमारे आदिवासी जो आदिवासी हैं, आज तक हम लोग कृषि पर ही आधारित रहे हैं। ये सच्चाई है कि हमारे कुछ भाई बहन पढ़ लिख करके थोड़ा आगे जा करके नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रतिशत में देखें तो अभी भी हम, मुझे लगता है नहीं भी तो कम से कम 90% के लोग अभी भी हम लोग कृषि पर आधारित हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि, और चूंकि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं उनको नहीं पता कि हमारा जीवन किस तरह से हम उसको एक सस्टेनेबल किस तरह से बना सकते हैं, तो उनको पता है कि चाहे वो हम विकसित देश में रह रहे हों, चाहे वो विकासशील देश में रह रहे हों, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में रह रहे हों, लेकिन खाने की जरूरत जो है सबकी बेसिक है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए इफाड जो है कृषि आधारित जो कार्य हैं उनको सपोर्ट करके, उसको मदद करके इसको अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाह रही है।
लेकिन इस समय में जब पूरा विश्व पर्यावरण के जो बदलाव हुए हैं उसे प्रभावित है, कृषक इससे किस तरह प्रभावित हैं?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत विचारणीय भी है, क्योंकि चूंकि मैं खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और मैंने अपना बचपन गांव में गुजारा है, और जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि दिसंबर के महीने में अपने सारे धान काटने समेटने के बाद किसान ये जानते थे कि अब मुझे अपना अगले साल का काम करने का जो सिलसिला है उसको शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान ये भी जानते थे कि मुझे कब तक अपने खेत में धान का बीज डाल देना चाहिए जिसे वो अच्छी तरह से पैदावार दे सके। हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे उस समय कि चाहे भौगोलिक लोकेशन जिस तरह से भी हो, जून के महीने में बारिश शुरू हो जाया करती थी और उसके बाद बारिश लगातार होती थी। जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में अच्छी बारिश होती थी, अक्टूबर तक खेतों में पानी होता था। और लेकिन अभी ऐसा है कि जो जलवायु परिवर्तन के चलते, जैसे मैंने पिछले साल देखा 2022 में अपने यहाँ का जो हालात देखे मैंने, जनवरी से लेकर के करीब करीब जुलाई के आखिरी अगस्त महीने तक बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तो इन परिस्थितियों में होता क्या है कि जो किसान जो पूरी तरह से केवल और केवल मानसून बारिश के जो वर्षा के बारिश पर ही निर्भर करते हैं अपनी खेती के लिए, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तीन महीना का समय पार हो जाने के बाद अगर आप धान की भी खेती कीजिएगा तो आपको वो फसल आप उम्मीद नहीं कर सकते, वो उपज आप उम्मीद नहीं कर सकते जिस जो अगर आप जून के महीने में अगर धान की खेती करते तो दिसंबर में जो आपको पैदावार मिलनी थी वो आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो है हम लोग के लिए जो असर जो है सीधा सीधा किसानों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है, और आगे के समय में भी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये और अधिक होगा। इसलिए जलवायु परिवर्तन से तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इससे जो फर्क पड़ा है वो बेसिकली गरीबों के ऊपर पड़ा है, किसानों के ऊपर पड़ा है, और वो भी जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है।
आगे मैं पूछना चाहूंगी कि आदिवासी लोग किस तरह प्रकृति से जुड़े हुए हैं, किस तरह प्रकृति समर्थक हैं?
मैं ये कहना चाहूंगा कि आदिवासी लोग प्रकृति से जुड़े हुए नहीं है, आदिवासी लोग प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी कभी अलग थे और अब जुड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी हमेशा से ही प्रकृति और आदिवासी हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ये कभी भी अलग नहीं हुए। अगर मैं अभी जैसे अभी हम फरवरी के महीने में कुछ दिनों में हमारे यहाँ सरहुल पख का पर्व मनाया जाएगा। ऐसा नहीं था कि सरहुल हमेशा से मनाया जाता रहा है, और सरहुल की महत्ता हम जानते हैं, वो जंगलों से आती है, सरई के फूल से आती है, और आदिवासी लोगों ने इसको कभी भी अपना विरोधी, जंगल को अपना विरोधी नहीं समझा, उसको नष्ट करने की कभी नहीं सोची, हमेशा उसके साथ आनंद मनाया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आदिवासी जुड़े हुए या समर्थक हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा से ये उनके जीवन का अभिन्न अंग रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग हमें ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहते हैं, जंगल को मानते हैं, ऐसा नहीं है। आदिवासी और जंगल और जो प्रकृति है ये एक दूसरे के पूरक हैं, हमेशा से रहे हैं, और हम इसको अलग करके नहीं देख सकते। अगर प्रकृति और आदिवासी का जीवन दोनों साथ साथ चलता है, और इसीलिए हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लोग हम लोग तकनीकी की तरफ थोड़ा हमारा झुकाव बढ़ा है, लेकिन अब हम पुनः यह अनुभव कर रहे हैं कि हमें वापस प्रकृति के पास जाने की, और जिस तरह से हमारे पुरखों की जिंदगी जो प्रकृति से शुरू होकर प्रकृति में खत्म होती थी, वहां वापस जाने का समय आ गया है, हमें ऐसा लगता है।
रोशन जी, आपको बहुत धन्यवाद। सचमुच आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी हैं हमारे सामने, बहुत बड़े मुद्दे पर बात किया है, तो आपको बहुत धन्यवाद। और जिस काम के लिए आप समर्पित हैं आदिवासी लोगों के लिए, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका माँ की सीख। लेखक है समता बोरेकर। श्रोताओ, विवाह एक ऐसा बंधन है जो रिश्तों को नए पायदान पर ले जाता है। इस बंधन में बंध कर औरत की नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जिसमें वह एक नए घर में नए रिश्तों के साथ प्रवेश करती है। शादी के बाद बेटी मायके मेहमान की तरह आती जाती है, या मायके आना जाना किसी खास अवसर पर ही होता है। एक ही शहर में जब बेटी का ससुराल और मायका हो, या बेटी बार बार मायके की दहलीज पर कदम रखती है और बेटी अपने मायके में अपना आधिपत्य जताती है, तब वहाँ भी ननद भाभी में विवादों के अंकुर फूटने लगते हैं। मायके में बेटी की दखलंदाजी धीरे धीरे रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। ऐसी परिस्थिति में माँ बाप का फर्ज बनता है कि वे बेटी का पक्ष लेने के बजाय उसे समझाएं कि मायके में उसकी दखलंदाजी ठीक नहीं। शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं समता बोरेकर की लिखी नाटिका माँ की सीख।
अरे बहुत भूख लगी है कविता, जल्दी से कुछ दे दो।
अरे घर में घुसते ही फूक फूक के रट शुरू। चाय बनाने रखी है और ये लीजिए आपके ब्रेड सैंडविच।
ब्रेड सैंडविच, वाह वाह वाह, अरे बीवी हो तो ऐसी हो। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मुझे ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए भोपाल जाना है।
4 दिन?
अब क्या करूं कविता, भाई ऊपर से ऑर्डर आया है, जाना तो पड़ेगा।
आपका क्या है, ये कहा और ये चले। आपके बगैर मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अरे 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 क्यों?
अब देखो, मिनी थी तो उसके साथ दिन कट जाता था, लेकिन ये गर्मी की छुट्टियाँ आते ही वो चल देती है अपने मामा के घर, और अब आप चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूँगी।
अकेली? अरे भाई अकेली कहाँ हो, मम्मी है ना। अच्छा अच्छा एक काम करो, तुम भी अपने मायके हो, बस हो जाएगा काम।
अरे हाँ ये ठीक रहेगा, मैं ना अभी माँ को फोन करती हूँ।
मैडम फोन बाद में लगाना, पहले मेरी पैकिंग कर दो, सुबह सुबह जल्दी निकलना होगा मुझे।
अरे हाँ हाँ अच्छा ठीक है।
हेलो कवि, कवि बेटा सब ठीक तो है ना?
हाँ माँ सब मजे में है।
अरे तो रात के 11 बजे फोन क्यों किया बेटा तूने? मैं तो घबरा ही गई, वक्त का तो ध्यान रखा कर।
ओ 11 बज गया। अरे माँ घर के काम निपटाते निपटाते समय का ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा सुनो ना, मैंने इसलिए फोन किया था कि ना मैं कल घर आ रही हूँ।
ओफो तो इसमें क्या नई बात है, एक ही मोहल्ले के इस कोने पर तो तेरा ससुराल और दूसरे कोने पर तेरा मायका, तकरीबन हर दिन तेरा चक्कर लग ही जाता है। इस बात के लिए आधी रात को फोन किया तूने?
ओहो माँ पूरी बात तो सुनो ना, मैं ना पूरे 4 दिनों के लिए आ रही हूँ। वो क्या है ना, सुमित 4 दिन के लिए भोपाल जा रहे हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ।
अच्छा अच्छा ठीक है, अब फोन रख, बाय
बाय माँ।
इतनी रात गए, किसका फोन था माँ?
अरे कविता का था और किसका।
इतनी रात को, सब ठीक तो है ना, कोई इमरजेंसी तो नहीं?
अरे नहीं नहीं पगली है, ये बताने को फोन किया उसने कि कल वो यहाँ आ रही है।
अच्छा।
एक बेटी की माँ बन गई है, मगर हरकतें आज भी बच्चों जैसी ही है, जब देखो तब दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आती है। उधर दामाद ऑफिस गए नहीं कि इधर कविता हाजिर, अब उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कमल।
कोई बात नहीं माँ, समय के साथ साथ समझने लगेगी।
अरे जो अब तक ना समझी आगे क्या खाक समझेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा कमल। तेरी पत्नी विभा कुछ कहती नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं समझ नहीं रही हूँ। विभा को परेशान कर देती है कविता।
अब कोई बात नहीं माँ, उसकी इकलौती ननद है, थोड़े नाज नखरे उठाने दो माँ।
नहीं कमल यह गलत बात है, घर आते ही विभा को दौड़ा दौड़ा कर थका देती है कविता, विभा के अपने काम छूट जाते हैं, वो तो किस्मत कि मेरी विभा अच्छी है, कुछ कहती नहीं है। सुन कमल, एक काम कर, विभा को बोल अपने कपड़े पैक करे और 4-6 दिनों के लिए अपने मायके चली जाए।
है माँ, अभी पिछले महीने तो होकर आई है वो। माँ, कविता के चक्कर में मुझे क्यों सजा मिल रही है माँ?
देख कमल, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर, बस मैं कुछ नहीं जानती।
ठीक है माँ।
माँ, माँ मैं आ गई।
आ गई कवि, आजा 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 बेटा आजा।
हाँ, अरे माँ मैं तो सुबह से ही आ जाती, मगर इनके लिए रास्ते का टिफिन ये वो वगैरह बनाने बनाने में ना मैं लेट हो गई।
हमारी समधन कैसी है? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना बेटा?
ओहो, उन्हें क्या होना है माँ, सब बढ़िया है। भाभी, ओ भाभी, भाभी जरा पानी पिला दो और चाय चढ़ा देना भाभी, और हाँ साथ में पकौड़े भी खाऊंगी। माँ जल्दी जल्दी में नाश्ता तो करना रह ही गया।
अरे कवि, पर विभा तो नहीं है बेटा?
हाँ
हाँ, मैं भी इसलिए तेरी ही राह देख रही थी, तू आए तो चाय पिए, और जा जल्दी जा किचन में और हम दोनों के लिए चाय बना ला बेटा।
ठीक है, मैं ही चाय बना लेती हूँ। इतनी सुबह सुबह जाने कहाँ चली गई भाभी।
अरे कवि बेटा, कवि पकौड़े भी बना ले जो तेरे को खाना है। सुन, किचन में सब रखा है बेटा।
क्या मुझे ही सब बनाना पड़ेगा? ओफो, क्या मुसीबत है। माँ तुमने भी ना भाभी को बहुत ढील दे रखी है, अरे थोड़ी लगाम कसो।
हाँ अब उसे क्या बोलूं बेटा, दुनिया ही ऐसी है, बहुएं सासों के बारे में सोचने लगे तो उल्टी गंगा ना बहने लगे।
क्यों भैया कुछ नहीं कहते क्या?
अरे वो क्या बोलेगा, शादी के बाद बेटों के मुंह जुबान कट जाती है।
अरे वाह, ऐसे कैसे जुबान कट जाती है? माँ परेशान हो और बेटे को कोई परवाह नहीं। मैं 4 दिनों के लिए आई हूँ माँ, भाई की अच्छी खबर लूंगी।
अरे नहीं नहीं बेटा, उसे कुछ ना कहना, बात और ना बिगड़ जाए। तेरा क्या, 4 दिन में चली जाएगी, मुझे तो यहीं रहना है ना बेटा दोनों के पास।
ये लो चाय और बिस्किट।
बिस्किट? अरे पकौड़े कहाँ हैं?
अरे माँ पकौड़ों को मारो गोली, 4 दिन कोई आखिरी थोड़ी है, मैं फिर आ जाऊंगी, बार बार आऊंगी, तुम्हें कष्ट ना होने दूंगी। हाँ
यही तो मेरे जी का कष्ट है।
हाँ इसका क्या मतलब?
अरे तेरी भाभी बात बात पे तेरा ही उदाहरण देती है, कहती है तेरी सास कितनी अच्छी है, ना कोई रोग ना कोई डोक, चाहे दिन हो या रात हो, जब तू चाहे यहाँ टपक पड़ती है।
अच्छा?
हाँ, तो अब तू अपना ही देख ले, तेरी सास की तबीयत तो जब तक खराब होती रहती है बेटा, फिर तू उन्हें अकेला छोड़ जब तक यहाँ चली आती है। अरे सुमित ने कभी तुम्हें टोका नहीं?
अच्छा माँ, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं।
यही तो बेटी, तुम्ही से तो वो दोनों सीख रहे हैं। अरे अब जिसे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, वो दूसरों को क्या शिक्षा दे पाएगी, समझ रही है ना मेरी बात?
माँ मैं आपकी बात समझ गई, मैं माँ की ये सीख हमेशा ध्यान रखूंगी।
मेरी समझदार बेटी।
माँ की सीख। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संतोष जोशी, समता बोरेकर, दुर्गेश नंदनी और सुधीर तेलंग। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।